अरुंधति रॉय संस्करण के लिए बार्बी डॉल और केस की बदलती प्रतीकात्मकता, गुरप्रीत सिंह द्वारा। यह विचार मेरे मन में काफी समय से चल रहा था। दरअसल जब से मुझे पता चला कि मेटल इंक ने कनाडाई फुटबॉल स्टार क्रिस्टीन सिंक्लेयर को बार्बी डॉल की प्रेरक महिला श्रृंखला में शामिल करके सम्मानित किया है, इस संदर्भ में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की हालिया कार्रवाई ने मेरे इस विश्वास को और बल दिया है कि भारत की विश्व प्रसिद्ध प्रेरणादायक लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय को भी इन प्रेरक महिलाओं की बढ़ती सूची में शामिल होना चाहिए। आखिरकार इस श्रृंखला ने 20वीं सदी की दिग्गज अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता रोजा पार्क्स जैसी महिलाओं का जश्न मनाया है। एक लेखिका और एक कार्यकर्ता के रूप में उनके शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए रॉय को सूची में शामिल करना बिल्कुल सही होगा, और यह समावेश शक्तिशाली भारतीय प्रतिष्ठान में बैठे लोगों को भी एक बहुत ही कड़ा संदेश देगा, जो तर्क की किसी भी आवाज को दबाने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वह भी लोकतंत्र की आड़ में। वास्तव में पिछले कुछ दशकों में रॉय ने अनगिनत उदाहरणों का सामना किया है जिसमें उन्हें विभिन्न वैचारिक रंगों और रंगों का दिखावा करने वाली सरकारों और अन्य ताकतों द्वारा निशाना बनाया गया है, लेकिन दक्षिणपंथी हिंदुत्व ब्रिगेड मुख्य वैचारिक तंत्र रहा है जिसने लगातार उन्हें सताने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार की ओर से सक्सेना की हालिया कार्रवाई, जो संसद में कम संख्या के साथ सत्ता में वापस आई है, इस तरह के प्रयासों की श्रृंखला में नवीनतम है। उन्होंने न केवल रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, बल्कि कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व विधि प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, जिन पर आरोप है कि 2010 में कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में उनका भाषण देशद्रोह का कृत्य है। सक्सेना का यह आदेश सुशील पंडित द्वारा नई दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई शिकायत के आधार पर है। दिलचस्प बात यह है कि पंडित ने नवंबर 2010 में अपनी याचिका दायर की थी। दिलचस्प बात यह है कि सक्सेना को शिकायत के बारे में 14 साल बाद पता चला है। उत्पीड़न का यह नया कृत्य निश्चित रूप से प्रेरक महिला श्रृंखला के प्रवर्तकों से उचित जवाब देने का हकदार है। अपनी शुरुआत से ही मेटल इंक ने न केवल गैर श्वेत महिला आकृतियों को पहचाना है, बल्कि प्रेरक कहानियों वाली महिलाओं को भी पहचाना है। और क्यों नहीं, क्योंकि हमें अपनी बेटियों को न केवल करियर महिलाओं के रूप में बल्कि सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं के रूप में भी विकसित करना चाहिए। जब बार्बी को शुरू में सालों पहले पेश किया गया था तो यह यूरोसेंट्रिक स्वाद और पर्यावरण को पूरा करने वाली एक फैशन डॉल की तरह थी, जो मेरे जैसे रंग के लोग औपनिवेशिक दमन के इतिहास वाले देश से आते हैं इससे जुड़ नहीं सकते थे। यह मुख्य रूप से गोरी गोरी सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती थी जिसने हॉलीवुड और मॉडलिंग उद्योग पर राज किया। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अन्य जातियों जैसे कि अश्वेत, एशियाई, लैटिनो और ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका के स्वदेशी समूहों की विशेषताओं वाली गुड़िया बनाकर वास्तव में विकास किया है। उपनिवेशवाद के युग में यह और भी जरूरी हो गया था। फिर प्रेरणादायक महिलाओं की बढ़ती सूची है जो सभी श्वेत नहीं हो सकती। बार्बी क्लब ने पार्क्स के अलावा मैक्सिकन चित्रकार फ्रिदा काहलो को भी सही तरीके से शामिल किया है, जो अश्वेत अमेरिकी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अमेरिका में बस में अलगाव कानूनों के लिए एक श्वेत यात्री के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। सूची में अन्य प्रमुख हस्तियां हैं एलिनोर रूजवेल्ट, अमेरिका की प्रथम महिला जिनकी विरासत में सक्रियता रही है, जेन गुडॉल, एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और चिंपांजी की विशेषज्ञ, माया एंजेलो, एक प्रमुख कवि और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, मैडम सीजे वॉकर, एक स्वनिर्मित उद्यमी जिन्होंने कई बाधाओं को तोड़ा, बेसी कोलमैन, पहली अफ्रीकी अमेरिकी पायलट, इडा वेल्स, एक अफ्रीकी अमेरिकी पत्रकार, अन्ना माया वोंग, एक एशियाई अमेरिकी अभिनेत्री, इसके अलावा सैली राइड, एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री और कई अन्य। पार्क्स, जिसे 2019 में बार्बी द्वारा पेश किया गया था, हमारी बेटी के लिए हमारा क्रिसमस उपहार था, जो उस समय 11 वर्ष की थी। इसने न केवल उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी, बल्कि वह बॉक्स पर पार्क्स के बारे में लिखी गई संक्षिप्त कहानी से भी प्रभावित हुई। बाद में उसने उसके बारे में एक निबंध लिखा जिसमें यह भी बताया कि पार्क्स उसके निजी गुड़िया संग्रह में पसंदीदा क्यों बनी हुई है। पार्क्स की विरासत की बदौलत नागरिक अधिकार आंदोलन में उसकी रुचि बढ़ गई है, क्योंकि वह इस साल 16 वर्ष की हो गई है। अब वह अश्वेत इतिहास के बारे में किताबें बहुत उत्सुकता से पढ़ती है। युवा मन पर इस तरह की पहल का सकारात्मक प्रभाव हमारे परिवार ने पहली बार देखा। मेटल ने रॉय को अपनी सूची में शामिल करके इस प्रेरणादायक ट्रैक रिकॉर्ड को और मजबूत किया है। उन्होंने दो उपन्यास दी गॉड ऑन ऑफ स्मॉल थिंग्स और दी मिनिस्ट्री ऑन एटमोस्ट हैप्पीनेस के अलावा कई राजनीतिक निबंध प्रकाशित किए हैं और हमेशा वंचितों के लिए खड़ी रही हैं और सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती दी है। द गॉड ऑन ऑफ स्मॉल थिंग्स ने उन्हें 1997 का बुकर पुरस्कार दिलाया जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। रॉय पर यथास्थिति पर सवाल उठाने के लिए लगातार हमले किए जाते रहे हैं। वर्तमान दक्षिणपंथी सरकार के तहत उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यकों और असहमति की किसी भी आवाज़ के प्रति अत्यधिक असहिष्णु है। रॉय के करीबी कुछ विद्वानों को झूठे आरोपों में जेल जाना पड़ा और फिर भी वह अपने संकल्प पर अडिग रहीं। उनमें से एक दिल्ली विश्वविद्यालय के शारीरिक रूप से विकलांग प्रोफेसर जी एन साई बाबा को पिछली सरकार ने 2014 में सलाखों के पीछे डाल दिया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने न केवल उन्हें जाने देने से इनकार कर दिया बल्कि उन्हें अंतिम बार अपनी मां को भी देखने की अनुमति नहीं दी। साई बाबा को सिर्फ आदिवासियों या भारत के मूल निवासियों के अधिकारों की वकालत करने के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था, जिन्हें खनन उद्योग द्वारा उनकी पारंपरिक जमीन से बेदखल किया जा रहा था, जो नीचे से समृद्ध खनिजों की तलाश कर रहे थे। एक दशक तक जेल में रहने के बाद उन्हें इस साल की शुरुआत में अदालत ने बरी कर दिया और अब वे आजाद हैं। रॉय ने प्रतिशोधी भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा संभावित आपराधिक कार्रवाई के मद्देनजर अपने कारावास के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली लेख लिखा था। अतीत में अपनी बात कहने के लिए उन पर आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन शायद उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ने उन्हें सरकार की ओर से किसी भी कार्रवाई से बचा लिया। वे गुजरात में नर्मदा बांध के खिलाफ अभियान में सबसे आगे रही हैं, जिसने कई लोगों की आजीविका को खतरे में डाल दिया था, और उन्होंने 2015 में विद्वानों की हत्याओं और हिंदू दक्षिणपंथियों द्वारा गोमांस खाने के संदेह में एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के बाद अपना राष्ट्रीय पुरस्कार लौटा दिया था। उन्हें यह पुरस्कार 1989 में एक फिल्म की पटकथा लिखने के लिए दिया गया था। वह आज़ादी की मांग कर रहे कश्मीरी मुसलमानों पर चल रहे दमन के खिलाफ मुखर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य भारत में माओवादी विद्रोहियों के गढ़ में व्यापक रूप से यात्रा की ताकि उनकी कहानी का पक्ष समझा जा सके और आउटलुक पत्रिका के लिए एक बहुत लंबा निबंध लिखा। कोविड के दौरान उन्होंने जमीन से गरीबों की दुर्दशा के बारे में रिपोर्ट की। वह सत्ता और विशेषाधिकार की आलोचना में लगातार किसी का पक्ष लिए बिना रही हैं, चाहे वह पिछली ज्यादा उदार कांग्रेस सरकार हो या फिर अति राष्ट्रवादी एजेंडे वाली मौजूदा सरकार। इतना ही नहीं, वह महात्मा गांधी की भी आलोचना करती रही हैं, जिनकी हत्या हिंदू कट्टरपंथियों ने की थी। उन्होंने गांधी की आलोचना करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्हें जाति व्यवस्था में उनके विश्वास के लिए राष्ट्रपिता माना जाता है, भले ही उन्होंने अस्पृश्यता को चुनौती दी हो। उनका पहला उपन्यास केरल में कम्युनिस्ट सरकार की जाति आधारित उत्पीड़न और दलितों के खिलाफ भेदभाव पर दोहरी नीति के लिए भी आलोचनात्मक था। उनका दूसरा उपन्यास भारत के हाशिए पर पड़े वर्गों की एक मार्मिक कहानी है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके काम को देखते हुए वह निश्चित रूप से माया एंजेलो और इडा बेल्स में शामिल होने की हकदार हैं। बार्बी ने पहले ही महिला लेखकों और पत्रकारों के लिए जगह बना ली है। उन्हें बस रॉय के लिए थोड़ी जगह बनाने की जरूरत है ताकि मेरी बेटी की पीढ़ी की लड़कियां उनके जैसे भारतीय आइकन से प्रेरणा ले सकें और दुनिया भर के अत्याचारियों को उनके कुकृत्यों के लिए जवाबदेह बना सकें। अब समय आ गया है कि दुनिया उनके जैसे लोगों पर प्रकाश डाले जो लगातार खतरे में बैठे रहते हैं और भारत जैसे देश में राज्य की हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिसकी छवि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अक्सर हल्के में ली जाती है। इतनी धमकियों के बावजूद रॉय चुप नहीं रही और दुनिया को बताती रहीं कि भारत वास्तव में क्या है। निस्संदेह उनकी छवि उत्पीड़न के खिलाफ साहसी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में प्रेरक महिला श्रृंखला में उभरनी चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद।